नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार। इतिहास नवम पेपर के अंतर्गत मिस्र का अभ्युदय नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। राइज ऑफ इजिप्ट। भौगोलिक पृष्ठभूमि। मिस्र उत्तरी अफ्रीका में भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र पर यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका के बीच एक कड़ी के रूप में स्थित है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण में सूडान, पूर्व में लाल सागर एवं पश्चिम में सहारा का विशाल रेगिस्तान है। नील की घाटी प्राचीन काल से ही उर्वर रही है और कपास, गेहूं आदि के लिए मिस्र प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। आधुनिक युग में स्वेज नहर द्वारा भूमध्य सागर और लाल सागर से जुड़ जाने के कारण मिस्र एशिया एवं यूरोप का प्रमुख मार्ग स्थल बन गया और इसका राजनीतिक, आर्थिक एवं सामरिक महत्व काफी बढ़ गया, जिसके कारण यह देश एक संघर्ष स्थल बन गया। ऐतिहासिक विकास। मिस्र प्राचीन विश्व सभ्यता उद्गम स्थान माना जाता है और नील नदी घाटी की सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। मिस्र के पराक्रमी फराऊ शासकों के बनाए विश्व प्रसिद्ध पिरामिड आज भी उनकी प्राचीन गरिमा के परिचायक हैं। मिस्र में राजनीतिक एकता का सूत्रपात 3400 ईस्वी पूर्व में हुआ और महान सिकंदर के आक्रमण तक 31 राजवंशों ने राज्य किया। इस काल के राजवंशों ने साम्राज्य का विस्तार एशिया एवं अफ्रीका में दूर दूर तक किया, लेकिन सिकंदर के आक्रमण के बाद मिस्र ग्रीक के कब्जे में और पश्चात पहली सदी में रोमन कब्जे में चला गया। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात मध्य युग में जब अरबों का उत्कर्ष हुआ तो 646 ईस्वी में अरबों ने मिस्र को जीत लिया। मिस्र मध्य युग में एक खिलाफत का भी केंद्र रहा, लेकिन मध्य युग के अंत में जब ऑटोमन तुर्कों का उदय हुआ, उन्होंने 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया, तो 1517 ईस्वी में मिस्र भी ऑटोमन साम्राज्य द्वारा उदरस्थ कर लिया गया। अरब काल में मिस्र एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था और अरब नाविक भारत तथा अन्य देशों से माल खरीदकर मिस्र ले जाते थे तथा उसे इटली के नाविक वहां से यूरोप ले जाते थे तथा इटली के व्यापारिक शहरों की समृद्धि इसी व्यापार पर आधारित थी। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हो जाने के बाद व्यापारिक सुविधाएं प्रायः खत्म सी हो गई और यूरोपियनों ने एशिया के विभिन्न देशों में सामुद्रिक व्यापार करना आरंभ किया। इससे मिस्र की समृद्धि एवं महत्व पर गहरा आघात लगा। मिस्र को ऑटोमन साम्राज्य के एक साधारण प्रांत से ऊपर उठाने का कार्य नेपोलियन ने किया। 1758 ईस्वी में नेपोलियन ने मिस्र होकर स्थल मार्ग से ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और इस पर कब्जा कर लिया, परंतु यह कब्जा स्थायी नहीं हो सका। टर्की ने यूरोप के अन्य देशों के साथ विशेषकर ब्रिटेन की मदद से नेपोलियन की फौजों को इस क्षेत्र से मार भगाया, लेकिन नेपोलियन ने सारे विश्व को मिस्र के राजनीतिक एवं सामरिक महत्व का भान करा दिया। इसके बड़े ही दूरगामी परिणाम हुए। मिस्र की प्राचीन गरिमा, ऐतिहासिक महत्व एवं भौगोलिक सुविधाओं की ओर पुनः लोगों का ध्यान गया। ब्रिटेन ने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा पंक्ति में मिस्र को एक आवश्यक कड़ी मान लिया। इसके साथ ही नेपोलियन के आक्रमण के फलस्वरूप एक ऐसे व्यक्ति का उदय हुआ जिसने मिस्र के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह व्यक्ति था मोहम्मद अली, जो अल्बानिया का निवासी था। इसने नेपोलियन की फौजों के विरुद्ध तुर्क सेना का संचालन किया। अतः नेपोलियन के पलायन के बाद तुर्क सुल्तान ने मोहम्मद अली को मिस्र का सूबेदार बना दिया और उसे पाशा की पदवी भी दी। मोहम्मद अली ने शीघ्र ही मिस्र में एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। मोहम्मद अली 1805 से 1849 ईस्वी के मध्य। मोहम्मद अली एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने मिस्र का आधुनिकीकरण किया। उसने देश में जमींदारी प्रथा का अंत किया, वक्फों की जायदाद को जब्त कर लिया। विदेशी विशेषज्ञों में फ्रेंच प्राध्यापक, इंजीनियर आदि काफी संख्या में बुलाए गए और देश में भी उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय खोले गए। छापाखाना तथा अखबार की व्यवस्था भी की गई और यातायात के साधनों का विकास किया गया। इसी के साथ मोहम्मद अली ने एक ताकतवर सेना का संगठन किया। उसने फ्रेंच फौजों की सख्ती परख ली थी, अतः उसने अपनी फौज को फ्रेंच नमूने पर संगठित किया और इसके लिए फ्रेंच जनरल, इंजीनियर एवं अन्य विशेषज्ञों को नियुक्त किया। शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी इसने फ्रेंच पद्धति का ही सहारा लिया। इसके कारण मिस्र की फौज काफी शक्तिशाली हो गई। टर्की का सुल्तान मिस्र का अधिपति था, लेकिन उसका नियंत्रण सिर्फ नाम मात्र का था। इस कारण मोहम्मद अली की महत्वाकांक्षा में वृद्धि होने लगी और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में प्रसार की योजना बनाई। प्रथमतः 1818 ईस्वी में तुर्क सुल्तान के आग्रह पर उसने अपने पुत्र इब्राहिम को अरब क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस तरह अरब क्षेत्र पर सुल्तान का आधिपत्य हो गया। तत्पश्चात 1820 ईस्वी में इब्राहिम ने सूडान पर आक्रमण करके उत्तरी सूडान पर कब्जा कर लिया। इस तरह उसकी शक्ति में वृद्धि होती गई, लेकिन 1827 ईस्वी में ग्रीक स्वातंत्र्य युद्ध में जब उसने टर्की का साथ दिया तो उसे ब्रिटेन, रूस और जंगी जहाजों का सामना करना पड़ा और 9 दिनों के युद्ध में उसका जंगी बेड़ा नष्ट हो गया। इससे उसकी शक्ति को धक्का लगा, लेकिन सुल्तान की कमजोरी उसने परख ली। सुल्तान ने उसे मदद के बदले सीरिया की सूबेदारी का लालच दिया था। अतः 1831 ईस्वी में उसने तुर्क साम्राज्य के एक प्रांत सीरिया पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। इससे सुल्तान के खेमे में हलचल मच गई। यूरोपियन देश भी इससे बौखला गए और रूस ने सुल्तान को मदद देने का वादा करके 1833 ईस्वी में एक संधि द्वारा सुल्तान से कई राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार प्राप्त कर लिए। रूस के जंगी पोतों को अब खाड़ियों के क्षेत्र में भी घुसने का अधिकार मिल गया। इसके विपरीत ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस के प्रभाव वृद्धि से आतंकित होकर सुल्तान पर दबाव डाला और सुल्तान ने मोहम्मद अली से समझौता करके उसे सीरिया, पैलेस्टाइन एवं सिलीसिया का क्षेत्र सूबेदारी में दे दिया। इसके कारण मोहम्मद अली की शक्ति काफी बढ़ गई और उसने नए क्षेत्रों पर शासन के लिए अपने पुत्र इब्राहिम को सूबेदार बनाया। लंदन की संधि 1840 ईस्वी। मोहम्मद अली अपने बढ़ते पराक्रम के कारण अन्य देशों के आंखों में खटकने लगा। ब्रिटेन के शासक ईरान की खाड़ी एवं अरब प्रायद्वीप में तटवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। सुल्तान भी अपने ही सूबेदार के हाथों पराजित होने से खिन्न था। अतः सुल्तान ने एक जर्मन वॉन माल्टा की अपनी फौजों को प्रशिक्षित करने के लिए बुलाया। 1839 ईस्वी में मिस्र पर आक्रमण कर दिया गया, लेकिन सुल्तान की फौज पराजित हो गई और तुर्की जंगी बेड़ा अलेक्जेंड्रिया में कैद कर लिया गया। ऐसा प्रतीत होता था कि तुर्क साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। ब्रिटेन में इसके कारण काफी चिंता हुई। उसे भारतीय साम्राज्य पर खतरा दिखाई देने लगा। रूस ने भी टर्की की सुरक्षा का वादा किया था, अतः रूस के लिए भी इस घटना की उपेक्षा करना मुश्किल हो गया। प्रसा और ऑस्ट्रिया की सहानुभूति भी टर्की के साथ थी, अतः रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने मोहम्मद अली को अंतिम मैंथम दिया कि यदि उसने सीरिया, पैलेस्टाइन और सिलिसिया का परित्याग नहीं किया तो वे आक्रमण कर देंगे। मोहम्मद अली के सामने झुकने के सिवा कोई चारा नहीं था। अंततः 1840 ईस्वी में लंदन में एक नई संधि हुई, जिसके अनुसार मोहम्मद अली सिर्फ मिस्र का वंशानुगत बादशाह घोषित किया गया और उसे नवविजित प्रदेशों को लौटाना पड़ा। रूस द्वारा भी 1833 ईस्वी की संधि द्वारा खाड़ियों में प्रवेश के जो अधिकार प्राप्त किए गए थे खत्म कर दिए गए। इस तरह यह संधि ब्रिटेन की महान कूटनीतिक विजय थी, लेकिन इससे फ्रांस के प्रभाव को काफी धक्का लगा और उसने मोहम्मद अली को संधि के विरुद्ध उकसाया। युद्ध का वातावरण पुनः उपस्थित हो गया, लेकिन अंत में एक नए समझौते द्वारा यह तय हुआ कि मोहम्मद अली सीरिया के कतिपय क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रख सकेगा और खाड़ियों में टर्की के अतिरिक्त अन्य देश के जंगी जहाजों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया एवं टर्की शामिल हुए थे। इस तरह मोहम्मद अली के विशाल साम्राज्य का स्वप्न अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के भंवर जाल में फंस कर रह गया। स्वेज नहर का निर्माण 1859 से 1869 के बीच। मोहम्मद अली की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसने मिस्र का स्वामित्व वंशानुगत रूप से प्राप्त कर लिया और उसके वंशज खदीब कहलाने लगे। 1849 ईस्वी में मोहम्मद अली की मौत हो गई और अब्बास प्रथम खदीब बना। इब्राहिम की मौत पहले ही हो चुकी थी, अतः नए शासक के राज्यारोहण में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 1854 ईस्वी में अब्बास प्रथम की हत्या हो गई, तब शहीद पाशा नया खदीब बना। इसी के काल में भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर की योजना प्रकाश में आई। ऐसे नहर की स्कीम नेपोलियन ने अपने आक्रमण के दौरान बनाई थी और मोहम्मद अली के अंतिम दिनों में भी फ्रेंच प्रयास इस दिशा में हुआ था, लेकिन सईद ने अपने बचपन के मित्र फर्डिनेंड डी लेसेप्स नामक एक फ्रेंच इंजीनियर के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया, लेकिन इसमें उसने तुर्क सुल्तान की सहमति की शर्त लगा दी। क्रीमिया के युद्ध के पश्चात लेसेप्स ने यह योजना तुर्क सुल्तान के समक्ष पेश की और 1858 ईस्वी में उसकी स्वीकृति ले ली। 1859 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ और ब्रिटेन के निरंतर विरोध के बावजूद 1869 ईस्वी में स्वेज नहर बनकर तैयार हो गया और यह एशिया एवं यूरोप के बीच जोड़ने वाली कड़ी के रूप में विकसित हुआ। स्वेज नहर 103 मील लंबा था तथा इसके निर्माण में 20 करोड़ फ्रांस मुद्रा खर्च हुआ। इसके लिए 4 लाख शेयर बनाए गए। इसने हफ्तों की दूरी मात्र कुछ घंटों की कर दी। स्वेज कंपनी को 1869 ईस्वी में 99 साल का पट्टा प्राप्त हुआ, जो 1968 में खत्म होना था। इसमें मुख्य भागीदार मिस्र और फ्रांस थे। इसके कारण मिस्र की महत्ता में जबरदस्त वृद्धि हुई और इसका सामरिक एवं आर्थिक महत्व विश्वव्यापी हो गया। साथ ही फ्रांस के प्रभाव का भी विस्तार हुआ और टर्की में भी फ्रेंच विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाने लगे। 1863 ईस्वी में तुर्क सुल्तान ने पेरिस की यात्रा की थी और इसके बाद टर्की में अनेक शिक्षणालय खुले, जिसमें फ्रेंच नोट छापने का भी अधिकार दिया गया। इसमें फ्रेंच पूंजी ही मुख्यतः लगी हुई थी, अतः फ्रेंच प्रभाव का इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ। लेकिन 1870 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी द्वारा पराजित हो गया, अतः उसकी शक्ति को गहरा धक्का लगा। इसका असर शीघ्र ही मिस्र की राजनीति पर भी पड़ा। 1863 ईस्वी में सईद पाशा की मौत हो गई और इस्माइल पाशा नया खदीब बना। उसने विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई और यूरोपीय देशों से काफी ऋण लिए, जिसमें ब्रिटेन प्रमुख महाजन बन गया। ऋण की रकम इतनी बढ़ गई कि सूद की अदायगी भी टैक्स की आमद से होना मुश्किल हो गया। अतः खदीब ने स्वेज नहर के अपने शेरों को, जिनकी संख्या 1,76,000 थी और जो मिस्र को जमीन एवं मजदूर देने के बदले प्राप्त हुए थे, बेचने का निर्णय किया। फ्रांस अपनी हार के बाद से संकट के दिनों से गुजर रहा था और कुछ भी करने में असमर्थ था। अतः स्वेज के महत्व को ध्यान में रखकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिजरेली ने 1875 ईस्वी में उन सभी शेयरों को खरीद लिया। इस तरह ब्रिटेन भी अब स्वेज नहर में फ्रांस का भागीदार हो गया और देशों ने मिलकर स्वेज कैनाल कंपनी का संगठन किया। फ्रांस की दशा उस समय बहुत ही दयनीय थी और बिस्मार्क की कूटनीति के कारण वह यूरोप में अकेला पड़ गया था और प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं था। अतः फ्रेंच पूंजीपतियों ने इस काल में ब्रिटिश पूंजीपतियों से सहयोग किया और दोनों देशों ने अपने ऋण की बदौलत मिस्र पर आर्थिक शिकंजा कसना शुरू किया। इस्माइल की फिजूल खर्ची के कारण मिस्र दिवालिया हो गया था। शेयरों की बिक्री के पश्चात भी पावना बाकी रहा और फ्रांस तथा ब्रिटेन मिस्र के आंतरिक शासन में भी कर्ज की अदायगी के लिए हस्तक्षेप करने लगे। सरकारी आमद का अधिकांश भाग सूद के रूप में ही खत्म हो जाता था। अतः वसूली के लिए इन दोनों देशों ने अपने अधिकारी नियुक्त किए एवं सैनिक नियंत्रण भी स्थापित करना आरंभ किया। जब इस्माइल ने हस्तक्षेप किया तो दोनों देश उसके विरुद्ध हो गए। अभी भी तुर्क सुल्तान नाम के लिए मिस्र का अधिपति था। कृपया इसे फिर से सुन लेंगे। अभी भी तुर्क सुल्तान नाम के लिए मिस्र का अधिपति था। अतः इन देशों के अभाव में आकर सुल्तान ने 1879 ईस्वी में इस्माइल को पदच्युत कर दिया और उसके पुत्र तौफीक पाशा को नया खदीब बनाया। मिस्र पर ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना। इस्माइल के पतन के पश्चात मिस्र पर फ्रांस एवं ब्रिटेन और भी हावी हो गए। शीघ्र ही मिस्र में इसकी भीषण प्रतिक्रिया हुई और मिस्रवासियों ने अरबी पाशा, एक वीर देशभक्त के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसका नारा था, मिस्र मिस्रवासियों के लिए है, इजिप्ट फॉर इजिप्टियंस। इस विद्रोह का प्रभाव सारे देश में फैल गया और तौफीक पाशा को अनेक सुधार करने पड़े और विदेशी हस्तक्षेप पर रोक लगानी पड़ी। लेकिन यह स्थिति फ्रांस और ब्रिटेन के लिए असह्य थी। फ्रांस फिर भी दमनात्मक कार्यवाही में हिचक रहा था। अतः ब्रिटेन ने ही विद्रोह को कुचलने का भार उठाया और अपनी फौजें मिस्र में भेज दी। अरबी पाशा की फौज ब्रिटेन का मुकाबला टिक नहीं सकी और सितंबर 1882 ईस्वी में तेल एल कबीर के युद्ध में ब्रिटेन की विजय हुई और अरबी पाशा को कैदी बनाकर सिलोन भेज दिया गया। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मिस्र ब्रिटेन नियंत्रण में आ गया। यद्यपि अभी भी मिस्र पर तौफीक पाशा का शासन था तथा तुर्क सुल्तान उसका अधिपति था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण ब्रिटिश हाथों में आ गया। 1884 ईस्वी में लॉर्ड क्रोमर मिस्र में ब्रिटिश एजेंट एवं कौंसिल जनरल बनकर आया और अपनी निपुणता एवं कार्यकुशलता से उसने मिस्र में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की। लॉर्ड क्रोमर 1884 से 1907 ईस्वी के मध्य। लॉर्ड क्रोमर मिस्र में ब्रिटिश आधिपत्य का वास्तविक प्रतिष्ठाता सिद्ध हुआ। उसने तौफीक पाशा को कठपुतली बनाकर छोड़ दिया तथा ब्रिटिश अधिकारियों को सेना के संगठन, प्रशासनिक व्यवस्था एवं आर्थिक सुदृढ़ता की स्थापना के लिए नियुक्त किया और मिस्र का वास्तविक शासक बन बैठा। उसने 30 सदस्यों की एक विधानसभा की स्थापना की जिसने 14 खदीब द्वारा नामजद एवं शेष सीमित मताधिकार द्वारा निर्वाचित होते थे, लेकिन इसके अधिकार मात्र परामर्शदात्री थे। इसके साथ ही मिस्र अधिकृत सूडान में भी उसने हस्तक्षेप आरंभ किया और जनरल गॉर्डन को उत्तरी सूडान का शासक बनाकर भेजा। लेकिन 1885 ईस्वी में वहाँ पर मोहम्मद अहमद महदी के नेतृत्व में विद्रोह हो गया और गॉर्डन मारा गया। सूडान का मामला कई वर्षों तक अधर में लटका रहा, लेकिन अंत में 1898 ईस्वी में लॉर्ड किचनर ने सूडानी लोगों को परास्त किया। इसमें कुछ दिनों के बाद सारे सूडान पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। इस तरह मिस्र के क्षेत्र में ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना हुई और फ्रेंच प्रभुत्व का अंत हो गया। इससे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा मिली और स्वेज पर नियंत्रण होने के कारण सामरिक महत्व के एक महत्वपूर्ण ठिकाने पर भी ब्रिटिश प्रभाव छा गए, जो कि भविष्य में काफी लाभदायक सिद्ध हुआ। मिस्र में राष्ट्रीय आंदोलन। अरबी पाशा के विद्रोह मिस्री देशभक्तों की प्रथम रणभेरी थी, लेकिन इसे कुचल दिया गया। इसके पश्चात सूडान का महदी आंदोलन भी दबा दिया गया, लेकिन चिंगारी अंदर ही अंदर सुलगती गई। अरब क्षेत्रों में इस काल में तुर्क साम्राज्य के विरोध में स्वतंत्रता की भावनाएं जर पकड़ रही थी। पाश्चात्य राज दर्शन एवं जनतंत्र के सिद्धांतों का अरबों के बीच धीरे धीरे प्रचार हो रहा था। मोहम्मद अली के शासनकाल में सीरिया एवं मिस्र में फ्रेंच सभ्यता का प्रसार हुआ था और फ्रेंच शिक्षक एवं विशेषज्ञ भर गए थे। फ्रेंच क्रांति की संभावनाएं फ्रेंच साहित्य एवं अखबारों के माध्यम से अरब क्षेत्रों में भी फैल रही थी। फ्रेंच क्रांति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता की भावना का यूरोप में जो प्रसार हुआ था वह एशिया में भी फैल रहा था। तुर्क साम्राज्य के खिलाफ बाल्कन क्षेत्र में कई सफल आंदोलन हो चुके थे और अब एशिया में भी उसी भावना का विकास हो रहा था। अरब क्षेत्रों में विशेषकर सीरिया, लेबनान और मिस्र में पाश्चात्य मिशनरी भी अपने प्रचार में लगे थे और उनके शिक्षणालयों में प्रशिक्षित देशभक्त नए जागरण से ओतप्रोत थे। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य देशों की आपसी प्रतिस्पर्धा भी इसमें सहायक थी। 1870 ईस्वी के बाद फ्रांस निर्बल पड़ गया था, लेकिन जर्मनी ने तुर्क सुल्तान से मैत्री बढ़ाकर 1893 ईस्वी में बर्लिन बगदाद रेलवे के निर्माण के घोषणा करके इस क्षेत्र में कूटनीतिक जोड़ को नया रूप दे दिया। ऐसी स्थिति में सारे पश्चिमी एशिया में नई राजनीतिक लहर व्याप्त हो गई। तुर्क सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय ने अखिल इस्लामियत का नारा बुलंद कर दिया। पाश्चात्य विरोधी भावना को भी प्रज्वलित किया था, अतः मिस्र वासियों को पाश्चात्य शिकंजा असह्य लगने लगा। अरबी पाशा के विद्रोह के कुछ ही दिनों के बाद मिस्री देशभक्त ने पाश्चात्य विरोधी आंदोलन का संगठन किया, जिससे राष्ट्रीयता की भावनाओं का तेजी से प्रचार प्रसार होने लगा। मिस्री राष्ट्रीयता आरंभ से ही ब्रिटेन विरोधी थी और ब्रिटिश फौजों के अत्याचार उन्हें भूले नहीं थे। ब्रिटेन का आर्थिक शोषण एवं नियंत्रण मिस्रवासियों को काफी अखरता था, लेकिन मिस्र में कोई आंदोलन चलाना आरंभ में मुश्किल था। अतः अरबी पाशा के पतन के पश्चात मिस्री देशभक्तों का केंद्र पेरिस बन गया। फ्रांस के साथ मिस्र का संबंध काफी पुराना था और ब्रिटिश प्रभाव के वृद्धि के कारण फ्रांस में काफी क्षोभ था। विश्व राजनीति में भी फ्रांस और ब्रिटेन प्रतिद्वंद्वी थे, अतः फ्रांस में आरंभ में मिस्री नेता काफी परिश्रय मिला। आरंभ में पेरिस मिस्री देशभक्तों का नेता मुस्तफा कामिल था और इसने 1895 ईस्वी में मिस्र में आकर एक राष्ट्रवादी दल अल हिज्ब अल वतनी का नेतृत्व किया। यह दल 1881 ईस्वी में ही अरबी पाशा एवं शरीफ पाशा के प्रयास से कायम हो चुका था। इस दल की भक्ति में तेजी से विकास हुआ और मिस्र देशभक्ति युवक काफी संख्या में इसके सदस्य बन गए। फ्रेंच प्रोत्साहन के कारण यह आंदोलन गति पकड़ता गया और 1900 ईस्वी में अल लिवा नामक समाचार पत्र का भी आरंभ किया गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रत्यावर्तन से 1904 ईस्वी में एंग्लो फ्रेंच समझौता हो गया और जर्मन खतरे से निपटने के लिए दोनों परंपरागत प्रतिद्वंदी मित्र बन गए और अपने विवादों को सुलझाने में सफल हो गए। फलतः मिस्रवासियों को फ्रेंच सहायता मिलनी बंद हो गई और उनके आंदोलन को बहुत बड़ा धक्का लगा। पेरिस में मिलने वाली उनकी सुविधाएं बंद हो गई और मिस्र के अंदर भी आंदोलन को जारी रखने में दिक्कत होने लगी। लेकिन 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस की पराजय ने सारे मिस्र में एक नया उत्साह भर दिया। मिस्र के देशभक्त अब खुलकर ब्रिटिश प्रभुत्व के अंत के लिए आंदोलन करने लगे और उनके प्रशासन में रुकावटें डालने लगे। इस काल में अल हिज्ब अल वतनी, उम्मा एवं शेख अली यूसुफ द्वारा संगठित संविधान सुधार दल सक्रिय थे। उम्मा दल का पत्र अल जरीदा, मुस्तफा कमाल का अल लिवा और शेख यूसुफ का अल मुयद भी देशभक्ति का प्रचार कर रहे थे। प्रथम महायुद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में कूटनीतिक क्षेत्र में ब्रिटेन को अनेक सफलताएं मिली और फ्रेंच समझौता के पश्चात 1907 ईस्वी में एंग्लो रूसी समझौते के द्वारा ब्रिटेन ने रूस के साथ सभी विवादों को सुलझाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। वास्तव में यूरोप में युद्ध के काले बादल मंडरा रहे थे। ऐसी स्थिति में एशिया में भी परिवर्तन अनिवार्य था। 1908 ईस्वी में टर्की में तरुण तुर्क क्रांति हुई और सुल्तान का शासन आरंभ हुआ जो कि जर्मनी का समर्थक था। इससे ब्रिटेन की शक्ति को बहुत बड़ा धक्का लगा। अतः ब्रिटेन ने तुर्क साम्राज्य के अरब राष्ट्रवादियों को टर्की के खिलाफ भड़काना आरंभ किया और 1913 ईस्वी में एक विधानसभा का भी गठन मिस्र में किया गया। लॉर्ड क्रोमर के बाद मिस्र में सर एल्डन गोस्ट और लॉर्ड किचनर ने भी तुर्क विरोधी अभियान चलाया। मिस्र पर ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना। किचनर ने 1914 ईस्वी में टर्की के युद्ध में प्रवेश करते ही मिस्र को तुर्क साम्राज्य से पृथक करने की घोषणा कर दी और ब्रिटिश संरक्षण औपचारिक रूप से कायम कर दिया। इस तरह मिस्र अब नाम के लिए भी ऑटोमन साम्राज्य का अंग नहीं रह गया और खदीब को भी सुल्तान की पदवी दे दी गई। किचनर ने तुर्क समर्थक सुल्तान अब्बास हिल्मी को भी पदच्युत कर उसके स्थान पर उसके चाचा हुसैन कामिल को मिस्र का सुल्तान बनाया। नया सुल्तान ब्रिटेन का खिलौना मात्र था। अतः युद्धकाल में मिस्र के धन जन का ब्रिटेन ने मनमाना उपयोग किया। प्रायः सारे देश में ब्रिटिश सैन्य शासन कायम कर दिया गया एवं राष्ट्रवादियों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया गया। मिस्र की सेना भी युद्ध में झोंक दी गई और मिस्रवासियों को भारी संख्या में कूली एवं श्रमिक के रूप में युद्ध कार्य में लगाया गया। इससे मिस्र की जनता में अपार असंतोष छा गया। मिस्र राष्ट्रों ने इस काल में जनतंत्र एवं राष्ट्रीयता की स्थापना को युद्ध का उद्देश्य घोषित किया और इसी आधार पर वे विश्व जनमत की सहानुभूति मांग रहे थे। लेकिन इन नारों का मिस्र में प्रतिकूल असर पड़ा। इसी काल में मिस्री देशभक्तों को एक नया नेता मिला जिसका नाम था साद जगलुल। इसने युद्ध काल में ही एक नए राष्ट्रवादी दल वफद का संगठन किया जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय मुक्ति। इस दल ने शीघ्र ही राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण कर लिया और साद जगुल देशभक्तों का प्रधान नेता बन गया। जगलुल पासा एवं राष्ट्रीय आंदोलन। जगलुल पासा का जन्म 1857 ईस्वी में एक संपन्न कृषक परिवार में हुआ था तथा इसने प्रारंभिक शिक्षा पाश्चात्य नमूने पर स्थापित शिक्षणालयों में पाई। अनेक पदों पर काम करने के पश्चात इसने 1906 ईस्वी में शिक्षा मंत्री का पद संभाला तथा शिक्षणालयों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार पर जोर दिया। 1907 ईस्वी में इसने उम्मा नामक राष्ट्रीय दल का गठन में सहयोग किया। 1910 ईस्वी में इसे न्याय मंत्री का पद मिला और इसी पद पर रहते हुए इसने देशभक्तों से संपर्क बढ़ाया। 1913 ईस्वी में इसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस काल में देश के अंदर अशांति छा रही थी, परंतु आरंभ में जगलूल पाशा अपने नौकरशाही पृष्ठभूमि के कारण जनप्रिय नहीं हो सका। फिर भी 1913 ईस्वी में इसे नवनिर्मित विधानसभा का उपाध्यक्ष बना दिया गया। धीरे धीरे इसने अपने समर्थकों की संख्या काफी बढ़ा ली और मिस्र की मुक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। परिणामतः युद्धकाल में ही जगुल पाशा के समर्थकों ने अपना आंदोलन तेज किया, परंतु युद्धकालीन व्यवस्था के कारण इस आंदोलन को सफलता नहीं मिली। मिस्र में मार्शल लॉ लागू था एवं विधानसभा को भंग कर दिया गया था। मिस्र पश्चिमी एशिया में ब्रिटिश सैनिक कार्रवाइयों का प्रमुख केंद्र बन गया और यहां से जनरल अलेनवी ने 1917 ईस्वी में पैलेस्टाइन पर आक्रमण कर उसे विजित किया था। 1918 ईस्वी में जब युद्ध की समाप्ति हुई तो जगलूल पाशा ने तत्कालीन एजेंट सर रेजिनॉल्ड विनगेट से मिलकर ब्रिटिश संरक्षण के अंत की मांग की तथा एक प्रतिनिधिमंडल को लंदन ले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन विनगेट ने उसे अन्य साथियों के साथ कैद कर माल्टा भेज दिया। इस घटना के प्रतिक्रिया के स्वरूप मिस्र में जनविद्रोह हो गया, जिसने काफी भयानक रूप धारण कर लिया। अतः ब्रिटिश सरकार ने विनगेट को वापस बुला लिया एवं जनरल अलेनवी को नया एजेंट बनाकर भेजा। अलेनवी ने जगुल को आजाद कर दिया तथा पेरिस शांति सम्मेलन में मिस्र को एक दूत मंडल के साथ जाने की अनुमति भी दी, लेकिन जगुल को पेरिस में कोई सफलता नहीं मिली। फिर भी अलेनवी ने समस्या का समाधान पर जोर दिया और ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेश सचिव लॉर्ड मिलनर को समस्या के समाधान के लिए एक आयोग का अध्यक्ष बनाया। मिस्र को स्वराज्य प्राप्ति। लॉर्ड मिलनर ने स्थिति का अध्ययन किया और ब्रिटेन वापस जाकर फरवरी 1921 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि मिस्र पर ब्रिटिश संरक्षण खत्म कर दिया और एक नया समझौता किया जाए जिसमें कुछ ऐसी शर्तें रखी जाए जिससे कि ब्रिटिश आर्थिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा हो सके। टर्की के साथ सेब्र की संधि तब तक हो चुकी थी और मिस्र पर ब्रिटिश आधिपत्य को मान्यता प्राप्त हो चुकी थी, परंतु मिलर के परामर्श के आधार पर जब मिस्री देशभक्तों से वार्तालाप आरंभ हुआ तो ब्रिटिश विशेषाधिकारों के प्रश्न को लेकर काफी गहरा मतभेद हो गया। एक बार फिर जगुल ने संघर्ष की राह अपनाई, लेकिन जगुल पाशा को कैद कर लिया गया। इस समय ब्रिटेन में युद्धोपरांत थकावट के आसार प्रकट हो रहे थे और मिस्र में ब्रिटिश एजेंट जनरल अलेनवी ने मिस्र की विस्फोटक स्थिति को ध्यान में रखकर समस्या के शीघ्र समाधान के लिए सरकार को लिखा, जिसके आधार पर 28 फरवरी 1922 ईस्वी को एक आंगल मिस्री समझौता हुआ और मिस्र को ब्रिटिश संरक्षण से मुक्त कर दिया गया। परंतु ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए ब्रिटेन को कई विशेषाधिकार दिए गए, जिसके अनुसार ब्रिटेन को स्वेज नहर के क्षेत्र में सेना रखने का अधिकार मिला तथा मिस्र में ब्रिटिश एवं अन्य विदेशियों के हितों की रक्षा का उत्तरदायित्व भी ब्रिटेन का ही बना रहा। इसके साथ ही ब्रिटेन को मिस्र की सुरक्षा एवं दायित्व एवं सूडान पर संरक्षण का अधिकार भी बरकरार रहा। इसके अतिरिक्त मिस्र के सुल्तान को शाह की पदवी मिली और ब्रिटिश एजेंट का नाम बदलकर उच्चायुक्त कर दिया गया। परंतु ब्रिटेन के विशेषाधिकार काफी व्यापक सिद्ध हुए तथा मिस्र की स्वतंत्रता की दिशा अपूर्ण रह गई। देशभक्तों में इसके कारण असंतोष बना रहा, फिर भी यह स्वतंत्रता की दिशा में प्रगति का एक कदम था। इसके साथ ही ब्रिटेन का मुकाबला करना भी मिस्रवासियों के लिए कठिन कार्य था, अतः अंत में जगुल पाशा ने भी इसे सहमति दे दी। 1923 का संविधान। मिस्र में 1922 की घोषणा के तुरंत बाद अप्रैल 1923 में एक संविधान की भी घोषणा की गई, जिसमें एक वैधानिक राजतंत्र एवं मंत्रिमंडलात्मक संसदीय प्रणाली तथा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई। इसी काल में वफ्द के समानांतर एक नया दल उदार दल का भी विकास हुआ। 1923 ईस्वी में ही आम निर्वाचन हुआ जिसमें वफ्द पार्टी को विजय प्राप्त हुई और जगुल पाशा प्रधानमंत्री बन गया। मिस्र के शाह फुआद पाशा ने भी आरंभ में सहयोग की नीति अपनाई। इस तरह विधि विधान की दृष्टि से मिस्र स्वतंत्र हो गया, लेकिन ब्रिटिश सेना एवं ब्रिटिश विशेषाधिकारों के कारण पूर्ण सार्वभौम सत्ता मिस्र को नहीं मिली और इसके लिए भविष्य में काफी संघर्ष करना पड़ा। जग्गुल पाशा का मंत्रिमंडल आंगल मिस्री संबंध 1923 से 1935 ईस्वी के मध्य। जग्गुल पाशा ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उसने ब्रिटिश विशेषाधिकारों की समाप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। वह एक अनन्य देशभक्त था तथा देशवासियों को भी उसमें अगाध विश्वास था। इसी काल में टर्की में मुस्तफा कमाल ने सेब्र की संधि में संशोधन कराया तथा टर्की में कायापलट आरंभ किया। 1924 ईस्वी में ब्रिटेन में पहली बार रैमजे मैकडोनल्ड ने लेबर पार्टी की सरकार बनाई, जिससे मिस्रवासियों की आशा काफी बंधी। अतः 1924 ईस्वी में ही जग्लुल पाशा ने ब्रिटेन की यात्रा की ओर सरकार के समक्ष संशोधन का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल रहे और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। इस घटना की भयानक प्रतिक्रिया हुई और मिस्री देशभक्तों ने हिंसा का सहारा लिया। नवंबर 1924 में मिस्र स्थित ब्रिटिश फौज के सेनापति सर ली स्टैक की हत्या कर दी गई, जिससे ब्रिटेन में काफी रोष फैला। ब्रिटिश सरकार से मिस्र को अंतिम मेंथम दिया तथा सूडान के सभी मिस्री अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वापसी और हत्या के लिए हर्जाना एवं क्षमा याचना, हत्यारों को कठोर दंड और भविष्य में हिंसा एवं ब्रिटेन विरोधी प्रदर्शन को बंद करने की मांग रखी। इसके साथ ही सूडान में कपास की खेती के लिए नील नदी के जल एवं अबाध एवं अनियंत्रित आपूर्ति की शर्त भी इसमें जोड़ दी गई। इस मांगों की स्वीकृति प्रायः असंभव थी, अतः जग्गुल पाशा ने इनकार कर दिया। परिणामतः ब्रिटिश सेनाओं ने अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा कर लिया और इससे मिस्र में एक संकट की स्थिति कायम हो गई। अतः जग्लुल पाशा ने त्यागपत्र दे दिया और ब्रिटिश अधिकारियों ने शाह पर अपनी मांगों के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। शाह फुआद तुर्क वातावरण में पला था और निरंकुश शासन करना चाहता था। मिस्र में उत्पन्न संकट ने उसे अवसर प्रदान कर दिया। उसने पार्लियामेंट को बर्खास्त कर दिया और स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना की। राजभक्तों ने एक अलग दल इतिहाद दल की स्थापना की, जिसे राजकीय समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन मिस्र में इसके विरुद्ध भीषण असंतोष फैला और ब्रिटिश उच्चायुक्त के आदेश से शाह ने 1926 ईस्वी में नया आम निर्वाचन कराया, जिसमें जगलूल के वफ्द दल के 70% सदस्य निर्वाचित हुए। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने जगलूल पाशा को प्रधानमंत्री बनने पर आपत्ति प्रकट की, फलत उदार दल के नेता सरबत पाशा को प्रधानमंत्री पद दिया गया और उसने एक संयुक्त मंत्रिमंडल बनाया जिसमें वफ दल के 6 सदस्य रखे गए। जगलूल पाशा को संसद का अध्यक्ष बना दिया गया। सरबत पाशा ने 1927 ईस्वी में ब्रिटेन की यात्रा की और एक नई संधि के लिए वार्तालाप आरंभ किया, लेकिन ब्रिटेन ने मिस्र में ब्रिटिश सेना की शक्ति एवं आंतरिक सुरक्षा में हस्तक्षेप के अधिकार को बनाए रखने पर जोर दिया। वफ्द दल ने इन शर्तों का घोर विरोध किया और संप्रभुता संपन्न स्वतंत्रता की मांग रखी। ऐसी अवस्था में सरबत पाशा ने त्यागपत्र दे दिया। 1927 ईस्वी में ही जग्लुल पाशा की मौत हो गई और उसका अनुयायी नेहरू पाशा ने वफ्द दल का नेता हुआ। नेहरू पाशा ने ही सरबत पाशा के बाद नया मंत्रिमंडल बनाया और उसने ब्रिटेन की विरोध की नीति अपनाई। जग्लुल पाशा का मूल्यांकन। जग्लुल पाशा का स्थान आधुनिक मिस्र के निर्माताओं में सर्वोपरि है। 20वीं सदी में एशिया के विभिन्न पराधीन देशों में स्वतंत्रता की अग्निशिखा को प्रज्वलित करने में जिस यशस्वी नेताओं ने भाग लिया, उसमें जग्लुल का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। चीन में सन यात्सेन और भारत में महात्मा गांधी की तरह मिस्र में जग्लुल पाशा ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। यद्यपि उसका आरंभ एक नौकरशाह के रूप में हुआ, लेकिन अपनी मेधा एवं देशभक्ति के बल पर वह देशभक्तों का मान्यतम नेता बन गया। वह योग्य वक्ता, कुशल नेता एवं परिपक्व राजनीतिज्ञ था। उसने वफ़द दल को जो स्वरूप दिया उसके कारण मिस्र का राष्ट्रीय आंदोलन उसकी मौत के बाद भी चलता रहा और नेहरू पासा ने उसी की आदर्शों पर चलकर अभियान जारी रखा। अतः ज़ग़लुल पाशा को आधुनिक मिस्र का जनक कहा जाता है। नेहरू पाशा। ज़ग़लुल पाशा की मृत्यु के बाद वफ़द दल का नेता नेहरू पाशा 1927 से 1952 ईस्वी के मध्य के हाथ में आ गया। वह ज़ग़लुल के का जबरदस्त समर्थक था और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। उसने आरंभ से ही मिस्र की पूर्ण संप्रभुता की मांग की तथा सरवत पाशा द्वारा किए जा रहे संधि वार्तालाप का विरोध किया, जिसके कारण सरवत पाशा ने इस्तीफा दे दिया और नेहरू पाशा प्रधानमंत्री बन गया। उसने शीघ्र ही मिस्र को पूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य घोषित करने की मांग रखी, लेकिन शाह फुआद एवं ब्रिटिश उच्चायुक्त दोनों उसके विरुद्ध थे। अतः शाह ने पुनः मंत्रिमंडल एवं संसद दोनों को भंग कर दिया तथा 2 साल तक बिना संसद के ही शासन किया। इससे देश भर में असंतोष फैल गया और अंत में दिसंबर 1929 ईस्वी में नया निर्वाचन हुआ, जिसमें पुनः वफ़द दल की विजय हुई और नेहरू पाशा फिर प्रधानमंत्री बना। इसी साल ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बने। इस सरकार से मिस्रियों को काफ़ी आशा बंधी और नए ब्रिटिश उच्चायुक्त सर पर्सी लॉरेन के प्रयास से 1930 ईस्वी में नेहरू पाशा ने लंदन की यात्रा की, परंतु सूडान के प्रश्न पर गतिरोध पैदा हो गया। मिस्रवासी सूडान को अपने देश का अंग मानते थे तथा वहां अनियंत्रित प्रवेश का अधिकार चाहते थे। ब्रिटेन इसके विरुद्ध था, अतः संधिवार्ता निष्फल सिद्ध हुई और नेहरू पाशा वापस लौट आया। यहां पर उसने संसद की पुनः बर्खास्तगी का खतरा देखा, अतः उसने संसद के समक्ष 2 विधेयक रखे, जिसके अनुसार भविष्य में बिना संसद के शाह को शासन करने का अधिकार खत्म कर दिया गया। परंतु शाह ने इसकी स्वीकृति नहीं दी, अतः नेहरू पाशा ने त्यागपत्र दे दिया और सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। सिद्दीकी पाशा। शाह फुआद ने वफ़द दल के अभियान के दमन के लिए सिद्दीकी पाशा नाम के एक प्रतिक्रियावादी राजनीतिज्ञ एवं शराब दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया। सिद्दीकी ने वफ़द दल का दमन आरंभ किया एवं 1930 ईस्वी में एक नए संविधान की घोषणा की, जिसके अनुसार 1923 में स्वीकृत निर्वाचन पद्धति में आमूल परिवर्तन कर दिया। अब संसद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से एक निर्वाचन मंडल द्वारा होना तय हुआ। इसके आधार पर 1931 ईस्वी में आम निर्वाचन हुआ, जिसका वफ़द दल ने बहिष्कार किया। फलतः 7 दल को बहुमत प्राप्त हुआ और सिद्दीकी पाशा प्रधानमंत्री बना रहा। लेकिन वफ़द दल के असहयोग आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया और लोगों ने कर देना बंद कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1933 ईस्वी में सिद्दीकी ने पदत्याग कर दिया। इससे सारे देश में अव्यवस्था फैल गई। विवश होकर शाह फुआद ने मोहम्मद तौफीक नसीम पाशा नाम के एक निर्दलीय व्यक्ति को 1934 ईस्वी में प्रधानमंत्री बनाया। इसने शाह को उदार एवं लोकतांत्रिक नीति अपनाने पर जोर दिया। वफ़द दल पर से लगे प्रतिबंध हटा लिए गए और 1923 ईस्वी के संविधान के आधार पर पुनः आम निर्वाचन करने का फैसला भी किया। परंतु इसी काल में विश्व राजनीति में नए संकट का सूत्रपात हुआ, जिसका प्रभाव मिस्र की राजनीति पर भी पड़ा। आंग्ल मिस्र संधि 1936 ईस्वी। जिस काल में मिस्र में आंदोलन जोर पकड़ रहा था, उसी काल में यूरोप में हिटलर, मुसोलिनी आदि ने अपनी आक्रामक नीति से विश्व में एक नया राजनीतिक संकट कायम कर दिया। इसमें मुसोलिनी द्वारा इथोपियाई पर 1934 में आक्रमण से अफ्रीकी राजनीति एवं विशेषकर मिस्र की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश राजनयिकों ने स्थिति की गंभीरता को समझा और ब्रिटिश उच्चायुक्त लैक्सन ने मिस्र की समस्या पर के समाधान पर जोर दिया। अंत में शाह ने भी लोकतांत्रिक संसद के निर्वाचन की स्वीकृति दे दी, परंतु अप्रैल 1936 में शाह फुआद की मौत हो गई और उसका नाबालिग पुत्र शाह फारूक गद्दी पर बैठा। तत्पश्चात 1936 में विश्व में आम निर्वाचन हुआ और पुनः वफद दल को की भारी विजय हुई और नेहरू पाशा प्रधानमंत्री बना। नेहरू पाशा ने अगस्त 1936 में ब्रिटेन के साथ एक संधि की, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने मिस्र को एक पूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य स्वीकार कर लिया और उच्चायुक्त के स्थान पर स्वतंत्र देशों की तरह राजदूतों का आदान प्रदान करना तय किया तथा मिस्र को राष्ट्रसंघ की सदस्यता दिलाने का भी वादा किया। इसके द्वारा स्वेज नहर की सुरक्षा की जिम्मेवारी ब्रिटेन के हाथ में बनी रही और ब्रिटेन को उस क्षेत्र में अधिकतम 10,000 सैनिक एवं 400 वायु सैनिक रखने का अधिकार मिला। बाकी क्षेत्रों से अपनी फौजों को हटाने का वादा भी ब्रिटेन ने किया। युद्धकाल में आपसी सामरिक सहयोग एवं मिस्र में ब्रिटेन को विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया तथा सैनिक सामान के क्रय एवं सैनिक प्रशिक्षण के लिए मिस्र को ब्रिटेन से ही मदद लेने की शर्त रखी गई। दोनों देशों ने अपनी विदेश नीति में भी सहयोग करना तय किया। इस संधि के द्वारा ब्रिटेन ने मिस्र में यूरोपीय राज्यों के राज्य क्षेत्रातीत अधिकारों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट का अंत करने का भी वादा किया। इसके अतिरिक्त सूडान में इस संधि द्वारा देशों का संयुक्त शासन कायम हुआ और मिस्र को सूडान में अपनी सेना रखने, आवश्यकता अनुसार अधिकारियों को नियुक्त करने एवं मिस्रवासियों को बसने एवं व्यवसाय करने का भी अधिकार मिला। इस संधि की अवधि 20 वर्ष की रखी गई। इस तरह इस संधि द्वारा मिस्र की संधि एक स्वतंत्र राज्य की हो गई और 1937 ईस्वी में मिस्र राष्ट्रसंघ का सदस्य हो गया। तत्पश्चात 1937 ईस्वी में मॉन्ट्रो में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और तय हुआ कि 1949 तक सभी पाश्चात्य देश मिस्र में अपने राज्य क्षेत्रातीत अधिकारों का अंत कर देंगे। 1936 की संधि मिस्र के राष्ट्रीय आंदोलन की एक बड़ी सफलता थी। फिर भी ब्रिटिश सेना का स्वेज क्षेत्र में जमाव, विदेश नीति प्रबंधन, सैन्य प्रशिक्षण तथा सैनिक सामानों के क्रय संबंधी शर्तों और सूडान में संयुक्त शासन मिस्री देशभक्तों की आंख में खटकता रहा। वास्तव में विकट अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण ही यह समझौता संभव हो चुका था। नेहरू पाशा ने भी स्थिति का अध्ययन कर इसे मंजूर कर लिया। परंतु मिस्र में इसी काल में उग्रवादी राष्ट्रभक्तों की कई जमातें स्थापित हो गई, जो कि किसी भी तरह विदेशी प्रभाव के विरुद्ध थी। 1928 ईस्वी में ही हसन अल बन्ना ने इख्वान अल मुस्लियून की स्थापना की थी, जो कि धर्म और राजनीति के मिश्रण से एक उग्रवादी गुप्त संगठन के रूप में विकसित हुआ। इसके सदस्य एक साथ कुरान और पिस्तौल को हाथ में लेकर अंग्रेजों को निकाल बाहर करने की शपथ लेते थे। धीरे धीरे इनकी शक्ति में वृद्धि हो रही थी। 1938 ईस्वी में वफद दल में भी फूट हो गई और इसके कुछ सदस्यों ने एक नया दल सात दल कायम किया। इसके विपरीत शाह समर्थक भी शक्तिशाली थे। अतः 1938 ईस्वी में जब शाह फारूक वाली हुआ तो उसने नेहरू पाशा को पदच्युत कर अपने समर्थक अली माहिर को प्रधानमंत्री बनाया। इसके कारण मिस्र की राजनीति में कई विकृतियों का संयोग बना रहा। इसी काल में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और मिस्र भी इससे काफी प्रभावित हुआ। मिस्र और द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के समय में ब्रिटेन एवं मिस्र का संबंध 1936 की संधि पर आधारित था तथा दोनों के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग का समझौता था। अतः ब्रिटेन ने मिस्र के शासन के लिए को अपने नियंत्रण में ले लिया तथा युद्ध की भीषणता के प्रसार होने से चिंतित होकर ब्रिटिश राजदूत लॉर्ड किलने ने शाह पर दबाव डालकर फरवरी 1981 में पुनः वफद दल का नेता नेहरू पाशा को प्रधानमंत्री बना दिया। इसके बाद 1944 ईस्वी तक नेहरू पाशा की सरकार बनी रही और ब्रिटेन के साथ युद्धकाल में पूर्ण सहयोग किया। 1944 में जब जर्मन पक्ष की हार प्रायः निश्चित हो गई तो फारूक ने वफद दल सरकार को बर्खास्त कर दिया और संसद के नए निर्वाचन की घोषणा कर दी। जनवरी 1945 के चुनाव में सात दल की विजय हुई और अहमद महर नया प्रधानमंत्री बना। इसने अप्रैल 1945 में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की विधिवत घोषणा कर दी, लेकिन कतिपय उग्रपंथियों को यह कार्य अनुचित प्रतीत हुआ और उन्होंने अहमद महर की हत्या कर दी। और तब साद नेता मोहम्मद नोकरासी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। मई 1945 ईस्वी तक यूरोप में महायुद्ध का अंत हो गया। अतः मिस्र ने में पुनः 1936 के संधि में संशोधन की मांग जोर पकड़ने लगी। मिस्री राष्ट्रभक्त स्वेज नहर से ब्रिटिश सेना की वापसी तथा सूडान पर पूर्णतः मिस्र नियंत्रण की मांग करने लगे। इसमें वफ्द दल ने मुख्य रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया और सारे मिस्र में आंदोलन छा गया। ऐसी स्थिति में फरवरी 1946 में महमूद नोकरासी ने त्यागपत्र दे दिया और उसके स्थान पर उदारवादी इस्माइल सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। इस तरह युद्ध की समाप्ति के बाद भी मिस्र में असंतोष तथा अशांति का वातावरण बना रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 1922 ईस्वी की राज्य क्रांति हुई। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।